بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو صبر پر بات چل رہی تھی، ایک تو صبر تھا کہ ایک تکلیف اور تین اجر، تین ثواب. جی، ایک پہلا بات ہوئی کہ صبر ایک عظیم عبادت ہے، اس کے بعد بات ہوئی صبر پر تین ثواب ملتے ہیں، اور ابھی جو صبر ہے وہ ترقی درجات کا سبب ہے. تیسرا عنوان ہے صبر ترقی درجات کا سبب ہے. جیسے کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی اسی کو پڑھتے ہیں کہ افلاطون ایک حکیم گزرا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اس نے پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر حوادثات حالات تیر ہو اور آسمان کمان ہو، تیر انداز حق تعالی ہو تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر انداز کے پہلو میں جا کھڑا ہو پھر تیر سے بچ جائے گا، کیونکہ تیر اسی کو ہلاک کرتا ہے جو اس کی زد پر ہو، سامنے ہو، اور جو تیر انداز کے پہلو میں کھڑا ہو اس پر تیر نہیں پہنچتا. جی، تو بہت ہی وہ ہوا، تو ہوا تو یہ ہے کہ تیر نہیں پہنچتا، یعنی تعلق تیرا اسی کو ہلاک کر، تیر اسی کو ہلاک کرتا ہے جو اس کی زد پر ہو، اور جو تیر انداز کے پہلو میں کھڑا ہو تیر اس کو ہلاک نہیں کرتا. اس پر تیر، یعنی تعلق مع اللہ ایک ایسی چیز ہے جس سے حوادث حالات ضرر نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ایک روایت ہے، اس زمانے کی روایت، کوئی بہت زیادہ مضبوط سند والی نہیں ہوتی، لیکن جس طرح یہ اسرائیلی روایت کہتے ہیں، جس طرح اور تاریخی روایات ہے اسی طرح کی یہ بھی ایک روایت ہے. اس میں افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر حوادث تیر ہو، حوادث سے زمانہ کو تیر تصور کرے، اور آسمان کو کمان، تیر یعنی جو جس سے چلایا جاتا ہے، اور جس طرح کمان سے تیر چلتا ہے اسی طرح آسمان سے حوادث انسانوں کو پہنچ رہے ہیں، اور حق تعالی تیر انداز ہے، یعنی وہ حوادث زمانے کے تیر چلا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان تیروں سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ کیونکہ پورا آسمان کمان بنی ہوئی ہے، تو ساری دنیا اس کی زد میں ہے، اور تیر انداز بھی کوئی اناڑی نہیں، یعنی کوئی نیا چلانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے جس کا نشانہ خطا ہو جائے، بلکہ تیر انداز حق تعالیٰ ہے، تو بچنے کا کیا راستہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر انداز کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو جائے، وہاں تیر نہیں آئے گا، کیونکہ تیر اسی کو ہلاک کرتا ہے جو اس کی زد پر ہو، سامنے ہو، اور جو شخص تیر انداز کے پہلو میں کھڑا ہوگا اس پر تیر نہیں پہنچتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اگر ان تیروں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کرو، تو پھر یا تو تیر لگے گا نہیں، یا کیا ہوگا، اگر حادثات پیش آئیں گا تو اس پیش آنے والے حادثات پر غم، صدمہ اور پریشانی اس درجہ کی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر تکلیف اور پریشانی بھی پریشانی نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتا ہے कि मुझे ये जो कचूके लग रहे हैं, जो परेशानियां लग रही, ये जो मुझे तकलीफ पहुंच रही है, ये भी अल्लाह ताला की मशीयत और हिकमत से पहुंच रही है और मेरे हक में बिल आखिर फायदा मंद है, मुझे उस पर अजर मिलने वाला है। जी, उस पर एक मिसाल दी थी कि कोई शख्स डॉक्टर से ऑपरेशन करा रहा है तो उस ऑपरेशन के नतीजे में तकलीफ भी हो रही है, आह आह भी कर रहा है, लेकिन दिल में यकीन है कि डॉक्टर मेरा हमदर्द है, ये मेरा खैर ख्वाह है। तो जब इंसान का अल्लाह जल्ल शानहू के साथ ताल्लुक कायम हो जाता है, तो अगर उसके बाद कोई परेशानी और तकलीफ भी आती है, तो आदमी के दिल में यह ईमान होता है कि अल्लाह ताला ने मेरे फायदे के लिए तकलीफ दी है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मुतमईन होता है मरीज के मेरे फायदे के लिए कर रहा है, तो अल्लाह ताला भी डॉक्टर है और अल्लाह ताला भी हालात, ये ऑपरेशन है तो मरीज हम सब है, बंदे हैं, तो वो भी ये समझे कि अल्लाह ताला ने दिया है तो उसमें कोई ना कोई फायदा है, अगरचे मुझे इससे तकलीफ हो रही है। जब ये इत्मीनान है तो फिर क्या हुआ, दर्द भी उठेंगी, आहे भी निकलेगी, आंसू भी निकलेंगे, लेकिन दिल में शिकवा नहीं होगा, बल्कि दिल में इत्मीनान होगा कि अंजाम कार बेहतर है और इंशाल्लाह मुझे फायदा पहुंचेगा। और जब ताल्लुक माल्ला के साथ तकलीफें आती है या मुसीबत आते हैं, तो एक तरफ तो ये फायदा है कि आदमी को परेशानी नहीं होती, और परेशानी का मतलब कि घबराहट है, परेशानी का मतलब घबराहट है, चैन नहीं आ रहा, बेचैनी है, बल्कि तकलीफ के बावजूद अल्लाह जल्ल शानू के फैसले पर राजी है। तकलीफ हो रही है हालात में, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला के फैसले पर राजी है। जी, दूसरा फायदा यह है कि जब ताल्लुक मा अल्लाह के साथ मुसीबत आती है तो ये मुजाहदा इस्तेरारी होता है। इस्तेरारी, इस्तेरारी कहते हैं मजबूर, यानी ये ऐसा मुजाहदा है कि हम उसको चॉइस करें कि ना आवे, नहीं हो सकता, अल्लाह की तरफ से जो हालात आते हैं, कभी सर्दी के कभी गर्मी के, तो अब उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये जो बर्दाश्त कर रहे हैं उसको इस्तेरारी कहते हैं, इसको कहेंगे मुजाहदा इस्तेरारी। तो गर्मी आ गई तो क्या हमारी बातें करने से, हमारे प्लान बनाने से क्या ये ठंडक में बदल जाएगी? नहीं, इस पर मुजाहदा करना है, सब्र करना है, यानी ये गैर इख्तियारी मुजाहदा है जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदा पर आ रहा है। और बुजुर्गों का तजर्बा यह है कि गैर इख्तियारी मुजाहदे में इंसान के दर्जात बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जी, नो ऑप्शन। जी, तो गैर इख्तियारी मुजाहदे में इंसान के दर्जात बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि पहले जमाने में लोग जब औलियाए किराम और सूफियाए किराम के पास इस्लाह के लिए जाते थे तो वो सूफिया मुजाहदे कराया करते थे, और मुजाहदों का मतलब यह है कि मशक्कतों और रियाजतों का काम कराया करते थे। मसलन किसी को इस काम पर लगा दिया कि तुम मस्जिद के हमाम के चूल्हे झोंका करो, गर्म पानी, पहले जमाने में हमाम होते थे, किसी को उस काम पर लगा दिया कि तुम नमाजियों के जूते सीधे क्या करो, ये मुजाहदा है। किसी को लगा दिया कि तुम वुजू के पानी भरकर लाया करो, ये मुजाहदा है। ये सब मशक्कत के काम करा रहे ताकि जो नफ्स गुनाहों का आदि हो गया है उसको जरा मशक्कत सहने का आदि बना दिया जाए और बिल आखिर वो गुनाहों से बचे। इस काम के लिए मुजाहदे कराए जाते थे, पहले कराए जाते, अब तो कोई नहीं, अब तो सब मॉडर्नाइज हो गए, अब तो सब भाग जाएंगे, जूते सीधे कराना जाओगे तो कहा कि ठीक है, हम तो फिर दूसरा शेख पकड़ेंगे। हजरत साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ ये हुआ। मक्की जिंदगी देखो, मक्की जिंदगी, मक्की जिंदगी جو بھی انسان اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے تو اس کو پہلے مکی زندگی سے گزرنا پڑتا ہے. تو جو شیخ کے پاس پہلے کیا مجاہدہ کراتے تھے, تو کیا تھا, یہ مکی زندگی تھی. جوتے سیدھے کرو, کہیں پانی بھرو, کہیں ادھر جاؤ, کہیں اس کو یہ کرو, تو یہ مجاہدہ. اور صحابہ نے بھی یہ اختیار کیا کہ مکہ مکرمہ میں مجاہدے ہو رہے ہیں. جی یہ مکی زندگی چل رہی تھی صحابہ کی, مجاہدے ہو رہے ہیں. مشرکین مکہ نے ظلم و ستم ڈھانے کا کوئی طریقہ ان پر نہیں چھوڑا. مشرکین مکہ نے ظلم و ستم ڈھانے کا کوئی طریقہ ان پر نہیں چھوڑا. مارنا, پیٹنا, دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹانا, پتھروں کو سینے پر رکھنا. ایک تو ریت کتنی گرم ہوتی ہے, اس پر لٹایا جاتا تھا پہلے زمانے میں. یہ سزا کس چیز کی سزا تھی, کہ مسلمان بنے تم کیوں ہو بس. تو اور اس کے اوپر پھر پتھر رکھا جاتا تھا, سیلے سینوں پر رکھنا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ صبر کرو, صبرن یا آل یاسین. یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ صبر کرو اور جواب مت دو. یہ مکی زندگی. جب اصلاح کرانے جاتے ہیں کسی شیخ کے پاس, اور وہ جو مجاہدہ کراتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, تو کیا کرو, صبر کرو. ہاں, باوجود ہے کہ طاقت ہے بھاگ جانے کی, چھوڑ دینے کی, سب کچھ ہے, فرمایا صبر کرو تو فائدہ ہو جائے گا, اور بھاگ جاؤں گے تو نقصان ہوگا. دیکھو صحابہ کرام ایمان لائے, ایمان لانے پر مارا جا رہا ہے, دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے, طرح طرح کی ذلت برداشت کرائی جا رہی ہے, اور فرمایا جواب مت دو. وہ اگر تھپڑ مار رہے ہیں نا, وہ اگر تھپڑ مار رہے تو ایک تھپڑ بھی تم ان کو نہ مارو. یہ ہے دیکھو مکی زندگی. وہ اگر تمہیں مار رہے تو تم مار کھا جاؤ, لیکن تم نہ مارو. جی اب تم کہو گے کیوں نہ مارے, فرمایا جب تربیت کرنا ہوتا ہے تو پہلے نہیں مارنا ہوتا, پھر مارنے کا جو حکم آئے گا بعد میں آئے گا, پہلے دن مدنی دور میں نہیں جانا ہے. جی تھپڑ بھی تو ان کو نہ مارو. اور یہ سب مجاہدہ ہو رہا تھا اس لیے کہ مجاہدات کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے, مجاہدات کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے درجات میں ترقی ہوتی ہے. کل ہی ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی, آج اسی پر بات آ رہی ہے. تو سمجھ گئے, تو مکی دور جیسے صحابہ نے گزارا ہے, ہر انسان پر جب اپنی اصلاح کرائے گا تو مکی دور آئے گا. کیا مطلب, کہا کہ جب اصلاح کرانے جاؤ تو اب جواب مت دو, تمہیں کوئی ستا رہا ہے, تمہیں کوئی ذلیل کر رہا ہے, تمہیں کوئی برا بلا کہہ رہا ہے, تم حالانکہ نیکی پر چل رہے ہو لیکن کہنے دو, جواب مت دو کسی, جواب دینے جاؤں گے تو سیدھا گریں گے, کہنے والوں کو کہنے دو. کیوں کہ یہی اصلاح ہے. اب صحابہ, صحابہ کی اصلاح نہیں ہو رہی, صحابہ تو اسلام لاتے ہی ان کی تو ترقی ہو گئی تھی. ہاں لیکن ان کو تو تکلیف, کیونکہ ان کو نمونہ بنانا تھا, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سیمپل تھے, ایگزامپل تھے, تو اس لیے ان کو ذرا زیادہ رگڑا گیا, اور ان کے درجات بھی اس طرح کے بلند ہوئے ہیں جنہوں نے وہ کھائی ہے. لیکن ہمیں جو رگڑا اور ہمیں جو تکلیف ہوتی وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی, صحابہ کی اصلاح کے لیے نہیں, صحابہ کا تو درجات بلند ہوئے. اور غیر اختیاری مجاہدات سے ترقی تیزی سے ہوتی ہے. اب یہ غیر اختیاری مجاہدات ہے, کوئی چارہ ہی نہیں, لیکن ایک مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے. یاد رکھو یہ بھی پہلے کسی مجلس کے اندر ہو چکا ہے, اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. ایک مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے اور ایک مجاہدہ غیر اختیاری ہوتا ہے. جی جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے, جیسے صوفیاء کرام اپنے مریدوں سے کراتے ہیں, اور ایک مجاہدہ, اس کو کہتے ہیں مجاہدہ اختیاری. بھائی جوتے سیدھا کراؤ, یہ جوتے سیدھا کر رہا ہے, اب وہ مجاہدہ اختیاری ہے, وہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اب شیخ کی اصلاح کے پاس کرانے کے لیے شیخ کے پاس گیا, اور شیخ نے کہا چلو مسجد میں سے جو نکل رہے سب کے جوتے سیدھے کرو. अब जाहिर बात है ये मुजाहदा है, जूते सीधा करना लोग देख रहे हैं। अब ये मुजाहदा ऐसा है कि इख्तियार में, अगर चाहो तो करो, न चाहो तो न करो। लेकिन एक मुजाहदा गैर इख्तियारी है कि जिसमें करना ही करना है, जिसे पहले गया है। और एक मुजाहदा गैर इख्तियारी और इस्तेरारी होता है, इस्तेरारी भी कहेंगे उसको, यानी मिन जाने बिल्ला ऐसे हालात पैदा हो गए कि उसकी वजह से मशक्कतों से गुजर रहा है जी, सदमे और तकलीफें आ रही है। ये गैर इख्तियारी मुजाहदा, उसको मुजाहदा इस्तेरारी भी कहते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम चाहो तो न करो, ऐसा नहीं, करना ही करना। अगर ताल्लुक माल्ला के साथ साथ रास्ता सही हो तो फिर इन गैर इख्तियारी मुजाहदात में रूहानी तरक्की बड़ी तेज रफ्तारी से होती है। देखो एक जुमला फरमाए, क्या ताल्लुक माल्ला के साथ साथ रास्ता सही हो, यानी एक इंसान सही दीन पर चल रहा है, सही नीयत से चल रहा है, और उस पर अगर ऐसा मुजाहदा इस्तेरारी आ गया और उस पर वो सबर करता है तो अल्लाह ताला उसकी तरक्की बहुत जल्दी करा देते। शर्त यह है याद रखना, क्या कि दीन के रास्ते पर हो, सही नीयत से हो, सही तरीके से हो, यह है। इसलिए फरमाया ताल्लुक माल्ला के साथ साथ रास्ता सही हो तो फिर इन गैर इख्तियारी मुजाहदात में रूहानी तरक्की बड़ी तेज रफ्तारी से होती है। आज क्या होता है, क्योंकि ये तो हर एक को करना पड़ता है, मुजाहदा इस्तेरारी जो है, जो अल्लाह की तरफ से हालात आते हैं, ये तो हर एक को इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन हर एक की तरक्की नहीं होती है। जिसका रास्ता गलत होता है, जो बेदीनी की तरफ होता है, तो उसके लिए तो ये मुजाहदे से तरक्की नहीं है, उसके लिए तो रास्ता खुलता है कि तौबा कर और अपने रास्ते को पलट मार, यानी अपने सही रास्ते पर आने की कोशिश कर, उसके लिए तो ये है। और जो गैर ईमान वाले होते हैं उनके लिए अजाब होता है, हाँ उनके लिए, मुसलमान के लिए तो तंबीह होती है कि तुम इधर आ जाओ, और जो दीन पर है, सही रास्ते पर चल रहा है और तमाम आमाल पर चल रहा है, सही नीयतों से चल रहा है, तो फिर उसके लिए ये मुजाहदे से तरक्की बहुत जल्दी होती है। तो पहले वाले के लिए तरक्की नहीं है लेकिन ढील है ताकि वो इस तरफ आ जाए, और दूसरे वाले के लिए तरक्की है, हाँ अलार्म है कि आ जाओ आ जाओ। एक इंसान बिल्कुल बेदीनी की जिंदगी गुजार रहा है, अब उस पर भी हालात तो आए, उसके लिए हालात यह है कि तुम अब अपना रास्ता छोड़ो, जो गलत रास्ता पकड़ा है, सिराते मुस्तकिम पर आ जाओ और तोबा इस्तिगफार कर लो, और कोई उलमा और मुफ्तियान किराम और सालिहीन के पास बैठना शुरू करो, उसके लिए तो ये आला रहा। लेकिन जो बैठा हुआ है और जो सालिहीन की सोहबत में चल रहे हैं, नेकोकारी जिंदगी है, आमाल पर है, उन पर भी हालात तो वही आए हैं और इनकी तरक्की ज्यादा हो रही, उसको भी बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो मजबूर है। तो नेक आदमी भी बर्दाश्त करेगा, बुरा आदमी भी बर्दाश्त करेगा, नेक आदमी के लिए तरक्की है, बुरे आदमी के लिए अलार्म है। जी तो समझ गए, तो हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं दोनों पर, कौन, नेक आदमी के लिए पर भी, दीनदार पर भी, बेदीन वाले पर भी। लेकिन कैसे पता चला, पता चलेगा कि ये हालात मेरे लिए तरक्की का जरिया है, ये हालात मेरे लिए मुसीबत का जरिया है। तो उसके लिए फरमाया अगर तुम्हारी जिंदगी दीन और आमाल पर चल रही है और वो हालात आए हैं तो तुम्हारे लिए तरक्की का जरिया है, और तुम्हारी जिंदगी दीन से हटकर गुजर रही है और अगर वो हालात आए तो तुम्हारे लिए तंबी है या तुम्हारे लिए मुसीबत और परेशानी है। जी मिन जानिबिल्ला ऐसे हालात पैदा हो गए कि उसकी वजह से मशक्कतों से गुजर रहा है, सदमे और तकलीफें आ रही है, अगर ताल्लुक माल्ला के साथ साथ रास्ता सही हो तो फिर इन गैर इख्तियारी मुजाहदात में रूहानी तरक्की बड़ी तेज रफ्तारी से होती है। लिहाजा अगर एक साल तक کسی خانقاہ میں رہ کر جو مجاہدات کروں گے. خانقاہ کا لفظ آتا ہے تو سمجھ گئے نا, میں نے پہلے بتایا, بار بار بتاتا رہتا ہوں تاکہ سمجھو. مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے, اور مدرسہ اس کو کہتے ہیں جہاں علم سیکھا جاتا ہے, اور خانقاہ اس کو کہتے ہیں جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اس کو خانقاہ کہتے, یاد رکھو, یہ روحانی ہسپتال ہے بیماریوں کا. تو اس کو کہتے, تو جہاں بھی خانقاہ کا لفظ آئے گا تو سمجھ جاؤ کہ جہاں روحانی. تو فرماتے ہیں اگر کسی خانقاہ میں رہ کر جو مجاہدات کروں گے ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ایک مہینہ تک غیر اختیاری طور پر مصائب اور مشکلات سے فائدہ ہوگا. ہاں دیکھو اتنی ترقی ہوتی ہے, اتنی ترقی ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے حالات آتے, اس حالات پر صبر کرے گا. تو یاد رکھو صبر, کیونکہ یہ بتائیں نا کہ صبر, اس کا عنوان کیا, صبر ترقی درجات ہے. پہلے گیا تھا صبر پر تین اجر ہے, اس سے پہلے گیا تھا صبر ایک عبادت ہے, اور ابھی جو ہے وہ صبر ترقی درجات ہے. تو فرمایا اللہ کی طرف سے اگر کوئی مجاہدات آئے ہیں اور اس پر انسان خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہا ہے تو اس پر اس کو بہت جلدی ترقی ہوتی ہے. کہ ایک انسان کسی خانقاہ میں ایک سال رہ کر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس کی وہ ترقی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں, مشکلات آئی ہیں اور اس کو برداشت کر رہا ہے, تو اس کو ایک مہینے میں وہ فائدہ ہو جائے, اس سے بھی زیادہ. تو مجاہدہ استراری کے نتیجے میں ایک مہینے میں وہ فاصلہ طے ہو جائے گا جو سال بھر میں طے نہیں ہوا تھا. تو اب بتاؤ اللہ کی طرف سے حالات رحمت ہوئے یا سزا ہوئی, بتاؤ. اب بھائی رحمت ہوئے, کیونکہ جو ہمارا آخرت تک جانے کا جو راستہ ہے بہت لمبا تھا, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ تو سائیکل پر چل رہا ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے, وہ کب تک پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ حالات ڈال کر اس کو اتنی تیزی سے ترقی کرا دیتے ہیں, پھر حالات ہٹا دیتے ہیں کہ اب آہستہ چل, کوئی بات نہیں, کیونکہ راستہ ہم نے بہت جلدی طے کرا دیا. جو سالوں کا راستہ تھا وہ ایک مہینے میں طے کرا کر اس کو چھوڑ دیا. سمجھے؟ یعنی مثال کے طور پر یہاں سے ہماری آخرت جانے کے لیے 10-15-20 ہزار کلومیٹر ہے. اب اللہ تعالیٰ بیچ میں حالات ڈال کر 10 ہزار کلومیٹر تو ہمیں ویسے ہی طے کرا دیتے جو ایک مہینے میں ہو جاتا, پھر کہا کہ تو اب چلتا, تیری زندگی باقی ہے, تو پہنچ جائے گا. تو یہ ہے, تو حالات ڈالتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, ترقی کرانے کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی اپنے ہی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. کیا ہوا, حالات آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ ان کے رشتے دار ہی ان کے دشمن بن گئے, اور ان کے اپنے ہی انہوں نے اپنے گھر سے نکال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر جو حج کے موسم میں ان کے ٹینٹ میں جاتے اور پوچھتے, تو دعوت دیتے تو وہ سامنے والے پوچھتے تم کون ہو اور تمہارے خاندان والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا, کہا کہ میرے خاندان والوں نے تو مجھے نکال دیا ہے. آج اگر کوئی دیندار آدمی اور ہمارے سامنے آ کر کہے میرے خاندان والوں نے مجھے نکال دیا, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ تو بدماش ہے, اسی وجہ سے تُو نے نکالا گیا. تو اچھا آدمی ہوتا تو تیرے خاندان والے تجھے رکھتے. بھائی ہر ایک انسان اپنے خاندانوں سے نکالے جانے والا برا نہیں ہوتا ہے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جواب یہی دیتے تھے کہ ہاں تمہارا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے تو ہم تمہاری بات کیسے قبول کریں, تمہاری خاندان والوں نے تمہاری بات کو تو نہیں سنا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی, ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ کوئی سننے کو تیار نہیں. کیوں کہ بات کو پہنچانے کے لیے تو پہلے ضروری ہے کہ خاندان والے سنیں, اس کے بعد دوسرے سنیں گے, اور یہاں ان کو تو نکالا گیا, اور کہتے بھی تھے کہ مجھے میرے کہا, تو نہیں سن رہے تھے. लेकिन उस मुजाहदे पर हमारे नबी की तरक्की क्या दर्ज है, सैयदुल अंबिया बने हैं, सारे नबियों के सरदार बने हैं। तो खैर ये तो ऐसे हालात हमारे पर भी आते हैं, इसलिए जो इंसान भी देखो, जो इंसान बाज मर्तबा इंसान के घरों में बेदीनी होती है और उनका कोई बच्चा बेचारा दीनदार बन जाता है, तो उसके घर वाले सब निकाल देते उसको घर से, बोले तो निकल इधर से, तू तो हमारे हमारे दिन पर तो रहा ही नहीं, हालांकि बेचारा वो सही दिन इख्तियार किया है। अब वो अगर किसी के पास जाता है तो बेचारा कोई उसको समझता नहीं है कि इसका क्या हाल है। ये बदमाशी की वजह से घर से नहीं निकाला गया है, ये सिर्फ अल्लाह की बात को सच्चा मानने की वजह से घर से निकाला गया है। अब ऐसे वक्त में जो इसका साथ देगा अल्लाह उसको नवाज देते हैं, और जो इसको अपने घर से निकालेगा तो अल्लाह उसको पकड़ करते हैं कि मेरे बंदे की तुमने फिक्र नहीं की। जी तो ये बात याद रखो, इसलिए कोई अगर ऐसा मिले तो उनकी बात को इत्मीनान से सुना जाए, तहकीक की जाए, तो वाकईतन ये आदमी सही है तो फिर उसका साथ भी दिया जाए कि कोई बात नहीं। क्योंकि पहले जब इंसान उस माहौल में होता है तो पहले उसको निकाला जाता है, बाद में घर वाले फिर उस दिन को कबूल करते हैं, फिर इज्जत देते हैं। हुजूर के खानदान वाले बाद में इस्लाम लाए हैं, पहले दूसरे लोग लाए हैं। इसलिए जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत से दूसरे लोग तो जल्दी कबूल करते हैं, लेकिन हमारे आसपास उठने बैठने वाले वो देर से आते हैं। तो क्या बता रहा था, जो एक महीना तक गैर इख्तियारी तौर पर मसाइब और मुश्किलात से फायदा होगा, तो मुजाहदा इस्तेदारी के नतीजे में एक महीने में वो फासला तय हो जाएगा जो साल भर में तय नहीं हुआ था। क्योंकि वो मुजाहदा जो खानकाह में रहकर हमने जो मुजाहदा किया साल भर, हालांकि वो भी मुजाहदा किया है, लेकिन वो मुजाहदा गैर इख्तियारी नहीं, वो मुजाहदा इख्तियारी है। इसलिए उस मुजाहदे इख्तियारी में साल भर मेहनत करते रहे तो हम वो फासला तय नहीं कर सके जो मुजाहदा इस्तेरारी में एक महीने पर सब तय करने से उससे ज्यादा लंबा फासला तय कर लेते हैं। तो मुजाहदा इस्तेरारी के नतीजे में जो साल भर में तय नहीं हुआ था तय कर लेते। बहरहाल मुजाहदा इस्तेरारिया में यह फायदा होता है, मुजाहदा इस्तेरारिया में यह फायदा होता है, इसलिए यह तकालीफ जो आती है बिलाखिर एक मोमिन के लिए फायदामंद होती है। जो मुजाहदा बहरहाल मुजाहदा इस तैयारिया में यह फायदा होता है, इसलिए यह तकालीफ जो आती है ये बिल आखिर एक मोमिन के लिए फायदामंद होती है। ये तकालीफ जो आती है मोमिन के लिए फायदामंद होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में तरक्की दर्जात का बाइस होती है, रूहानी मदारिज तय होते हैं। रूहानी मदारिज क्या है? रूहानी दर्जात, एक सीढ़ी तो जो हमारी बिल्डिंग में बनाई जाती है जिसके जरिए से हम दर्जात तय करते हैं, यानी एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, 10, 20, 25 तक तय कर लेते। और एक रूहानी सीढ़ी होती है जो हमें अल्लाह के ताल्लुक पर एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसका सीढ़ी का नाम रूहानी, इसको मदारिज कहते हैं, और उसी को मेराज भी कहते हैं। जी तो वो मदारिज जो रूहानी मदारिज तय हो जाते हैं, हमें हमारी तरक्की होती है और आखिरत में उस पर अजर सवाब मिलता है। और उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मुजाहदा मुजाहदा इख्तियारी, यानी यानी खानकाह में बैठकर जो मुजाहदा कर रहे हैं उससे हम ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन सीढ़ी के रास्ते से जा रहे हैं। और एक अल्लाह की तरफ से जो मुजाहदा आता है, जो हालात आते हैं और उस पर सबर करते हैं, उस पर जो बर्दाश्त करते हैं, उस पर तरक्की कैसी हो, जैसे लिफ्ट में बैठ गए तो आप 100 के मंजिले पर कैसे पहुंच जाते हैं, बस ये मिसाल समझ लो कि वो लिफ्ट की तरह है कि इंसान जल्दी तरक्की करता है और वो सीढ़ी से एक एक कदम चढ़ते चढ़ते हो सकता है रास्ते में थक भी जाए तो बैठ जाएगा, लेट पहुंचेगा। तो दोनों की मिसाल, क्योंकि आज की मादी मिसालें हैं तो समझने के लिए वही है, सीढ़ी से चढ़ना वो मुजाहदा इख्तियारिया है और लिफ्ट से चढ़ना वो मुजाहदा गैर इख्तियारिया है। तो रूहानी मदारिज तय हो जाते हैं और आखिरत में उस पर अजर व सवाब मिलता है। और ये और बात है कि तकालीफ मांगने की चीज नहीं है, ये और बात है कि तकालीफ मांगने की चीज नहीं बल्कि अल्लाह ताला से आफियत मांगो, अल्लाह ताला से आफियत मांगो कि अल्लाह हम कमजोर है, मालूम नहीं कि हम इन तकालीफ का तहमुल कर सके या न कर सके, हम अपनी बहादुरी का दावा नहीं करते, इसलिए या अल्लाह हम आपसे आफियत मांगते हैं, हम आपसे आफियत मांगते हैं, अलबत्ता लेकिन जब तकलीफ आएगी तो उस पर सब्र व तहम्मुल, जी तो उस पर सब्र व तहम्मुल की भी तौफीक आपसे मांगते हैं, जी सब्र व तहम्मुल की तौफीक भी आपसे मांगते हैं, अलबत्ता इन तकालीफ के दूर करने का इलाज भी करो, लेकिन उसके साथ साथ ये यकीन रखो कि तकालीफ बिल आखिर मेरे लिए इंशाअल्लाह फायदा मंद है। जी तकालीफ मांगना नहीं है, याद रखना कि आपने सोच लिया कि चलो यार इतनी तरक्की जल्दी है तो फिर अभी कल उठ के दुआ मांगूंगे कि अल्लाह मेरे पर हालात भेज दे ताकि मैं तेरे से ज्यादा करीब हो जाऊं, हाँ ऐसा नहीं करना, ये भूल नहीं करना। देखो इसलिए उन्होंने बता दिया कि मांगना नहीं है, ये दर्जात बहुत जल्दी ऊपर ले जाते हैं, उसका मतलब मांगना नहीं है, वो अल्लाह खुद जानता है कब देना है, कितना देना है और किसको देना है, वो जब इस्तेदाद पैदा होगी तो अल्लाह ताला उसको ले जाएंगे, वरना वैसे अगर मांग लिया या आ गई तो फिर कहें ऐसा ना हो कि हम भाग भी जावे, सब्रो तो लेकिन जब तकालीफ आएगी तो उस पर सब्र और तहम्मुल की भी तौफीक आपसे मांगते मांगना पड़ेगा। तो ये लेकिन इसके साथ साथ यकीन रखो कि तकालीफ बिलआखिर मेरे लिए इंशाअल्लाह फायदामंद है। ये ताल्लुक माल्ला तकालीफ के वक्त परेशानी को दूर कर देता है। तो देखो ये ताल्लुक माल्ला होगा, ताल्लुक माल्ला का मतलब जो इंसान सही दीन पर होगा, याद रखिए सही दीन ताल्लुक माल्ला उसको जरूर मिलेगा, यानी जिसमें इखलास हो, जिसमें गुनाहों से बचना हो, अल्लाह के हुक्मों पर चलना हो, उसको कहते हैं। जब इंसान इस तरीके से चलेगा तो उसको ताल्लुक माल्ला मिलेगा। देखो ताल्लुक माल्ला का हमें एहसास होना जरूरी नहीं है, अभी आप सोचोगे कि मुझे मिला कि नहीं मिला, अब जितने सुनने वाले हैं हर एक अपने को सोचेगा, हालांकि वो सब दीनदार है, सब नमाजी है, सोचेंगे कि मुझे ताल्लुक माल्ला के मिला नहीं मिला, इसलिए कि हर जगह पर आता है कि ताल्लुक माल्ला। देखो इसका एहसास होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके जो अलामतें है उसका पाया जाना जरूरी है। उसकी अलामतें क्या है कि अल्लाह के तमाम अहकाम पर चल रहे हो और तमाम गुनाहों से बच रहे हो और उलमा और अल्लाह वालों की कदर दिल में मोहब्बत हो, ये ताल्लुक माल्ला की अलामतें है। जब ये चीज होगी तो तकालीफ के वक्त परेशानी को दूर कर देता है। तो फिर जब हालात आते हैं तो उस वक्त में शिकायत नहीं करेगा, परेशानी को दूर करेगा, उसको सुकून होगा। जी तो ये है, तो ये ताल्लुक अगर सुकून हो रहा है तो ताल्लुक माल्ला समझो, वरना ताल्लुक माल्ला का लिबास तो होगा, ढोंग और जाहिर तो होगा, लेकिन जहां हालात आए तो वहां उसकी असलियत खुल जाएगी। इसलिए पहचान ना हो तो हालात पर पहचाना जाएगा। एक इंसान बोलता है अल्लाह से होता है, अल्लाह करता है, अल्लाह ही के हाथ में सब कुदरत है और वही हालात को लाता है, सब कुछ बोला बरसों तक बोलता रहा और उस पर जब हालात आ गए तो परेशान हो गया, तो मालूम हुआ बोल कुछ और थे, अंदर कुछ और था, क्योंकि अब हालात आए तो किसी तुम ही तो बोल रहे थे कि हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो अब क्यों शिकायत करते हो, अब क्यों उस पर उंगली उठाते हो, अब क्यों उसको तुम डांट रहे हो? अरे सब हालात अल्लाह की तरफ से, खामोश हो जाओ, बर्दाश्त कर लो। तो ताल्लुक मा अल्लाह नहीं मिला था। तो ये है, जब मिल जाएगा तो इंसान खामोश हो जाता है। किसी ने दो बातें कह दी, चुप, तो ये परेशान नहीं होगा। अगर उसको ऊपर की सीट मिली थी, यानी कोई चौधरी था, कोई बड़ा था और उसको छोटा बना दिया और बड़ा किसी और को बना दिया, तो अब उसको तकलीफ नहीं होगी बल्कि खुश होगा। अगर ताल्लुक माल्ला होगा तो कहेगा, अरे अच्छा हुआ इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे पर थी और मुझे इधर से उतार दिया और उसको बिठा दिया, मेरे लिए तो बहुत आसानी हो। आज कुर्सी के लिए झगड़ा हो रहा है, जब ताल्लुक माल्ला होगा तो वो कुर्सी छोड़ने पर उसको सुकून होगा, कुर्सी लेने पर घबराएगा, क्योंकि कुर्सी पर बैठने वाला कस्म कुर्सी में होता है, कहते हैं ना, इसीलिए तो चेयरमैन के, चेयर किसको कहते हैं, कुर्सी वाला आदमी, चेयरमैन कहते हैं ना, चेयरमैन ही कुर्सी है, तो चेयर वाला इंसान तो वही कुर्सी वाला, तो कुर्सी पर बैठने वाला कस्म कुर्सी में होता है, यानी मुसीबत में होता है, इसलिए जो उसको छोड़ता है तो वो तो खुश होता है। तो ताल्लुक माल्ला होगा तो वो कहेगा, बिठा दूंगे तो भी ठीक है, अल्लाह से मांग कर काम करूंगा, उतार दूंगे तो मेरे लिए मुसीबत गई कि मेरे को राहत मिल गई। झगड़ा, इसको कहते हैं ताल्लुक माल्ला। और ताल्लुक माल्ला नहीं होगा तो मुझे क्यों उतारा, अरे कौन मेरे पीछे पड़ा है, किसने मेरी शिकायतें की, अब उससे झगड़े में लग जाएगा। अल्लाह अकबर, क्योंकि ये है देखो, इसलिए मैं ताल्लुक माल्ला बार बार आया है तो आप सोचोगे कि मेरे अंदर है कि नहीं है, ये मैंने अलामत बता दी। अगर किसी को हम बैठे हुए और हमें किसी को आगे बढ़ा दिया, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ताल्लुक माल्ला हमेशा वो काम अच्छा करता है लेकिन नाम नहीं ढूंढता कि मेरा नाम हो जाए, बोले कि नाम किसी और का दे देता है। क्या कहता है कि नहीं नहीं असल में तो उन्होंने मदद की मेरी, मैंने नहीं किया, हालांकि काम मैंने किया है लेकिन नाम दूसरे का देगा। ये ताल्लुक माल्ला की अलामतें हैं। और आज ताल्लुक माल्ला नहीं मिला तो उसकी अलामत क्या है, काम दूसरा करेगा और कहेगा कि मैंने किया। क्या होगा, मैंने किया, अब बताओ। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा झूठ हुआ, किया किसी और ने और कह रहा है मैंने किया। तो ये अलामत इस बात की है कि उसको अभी तक मिला नहीं है ताल्लुक, क्योंकि हम तो ताल्लुक माल्ला किसको समझते, किसी के सर पर टोपी हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, लिबास जरा अच्छा हो और अमामा हो, तो फिर पूछना ही क्या, फिर तो कहते हैं कि तो बिल्कुल नाइब रसूल है और उसको तो अल्लाह का आला। याद रखो, ये जो लिबास अगर जाहिर ऐसा बना दिया, ये काफिर भी बना सकता है। अरे काफिर भी अमामा पहनकर, दाढ़ी रखकर, जुब्बा लेकर और हमारे जैसा कलमा भी पढ़े और हमारे जैसे अच्छे सिफात भी बयान कर दे और तकरीर भी कर दे, तफसीर भी कर दे, कर सकता है। कैसे पता लगाओगे कि भाई ये भी वैसा है, ये भी वैसा है, तुम इसको क्यों काफिर कहते हो और इसको क्यों तुम मुसलमान कहते हो, भाई शक्ल में तो दोनों बराबर है। जी आज एक कादियानी ग्रुप है, अगर वो उनका कोई जो बड़ा है अगर वो आ जाए हमारे पास, तो मैं कहता हूं हम सब के सब चाहिए, ये तो बहुत बड़ा मालिम है और जरा इंग्लिश बोल दे और थोड़ा सा बयान कर दे तो सब के सब उसकी बात को मान लेंगे, लेकिन बता दूं कि वो अंदर से पूरा काफिर होगा और हम उसकी बात, हम उसको अपनी मस्जिदों में बयान करवाएंगे और हमें पता भी नहीं, क्योंकि हम जाहिर परस्त है। ताल्लुक माल्ला एक अलग चीज है, ताल्लुक माल्ला के लिए अलग अलामतें हैं, इसलिए जाहिर को मत देखो, दिलों को देखो, दिलों को, उसके दिल में ईमान नहीं है। एक मुसलमान के दिल में जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है लेकिन वो मोमिन अच्छा है, और जिसने अमामा पहना हुआ है, दाढ़ी है और जिब्बा उजार है और बयान कर रहा है लेकिन ये काफिर है। तो आज क्या है, दिन खलत मलत हो गया है, खलत मलत हो गया, हम पहचान ही नहीं पाते यार कौन अच्छा है ना कौन बुरा है। तो ये 10 के जरिए से आपको एक बात का पता चल रहा है कि आप पहचान सको कि कौन दीन वाला है, कौन दिन वाला है, कौन ताल्लुक मा अल्लाह वाला है, कौन ताल्लुक मा शैतान वाला है, क्योंकि शैतान के ताल्लुक वाले भी होते हैं और अल्लाह के ताल्लुक वाले भी होते हैं, और दोनों के जाहिरी लिबास देखो तो एक जैसे मिलेंगे आपको। ये सारा अंदर के दिल से उसको पहचानने वाला ही पहचान सकता है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्का वरजुकना तिबाह, ये अल्लाह हमें हक दिखा और हक पे चला और हक वालों के साथ हमारा हश्र फरमा और हमें उनकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमा, क्योंकि हक और बातिल जाहिर से नहीं पहचान सकते। इस वक्त में जो मैं देख रहा हूं, बातिल पूरा का पूरा इस्लामी लिबास में आ रहा है, पूरा का पूरा। अल्लाह मैं तो हैरान हो जाता हूं, मैंने कहा हम जैसे धोखे खा जाते हैं तो बेचारा अवाम का क्या होगा। ये तो अल्लाह ताला दिल में ईमान की चिंगारी होती है तो फिर अल्लाह ताला चलते चलते समझा देते हैं कि अरे ये तो बातिल है जी। मौलाना मंजूर नौमानी, मौलाना अबुल हसन नदवी, आपने इनके नाम तो सुने हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के उलमा थे, वो भी ऐसे बातिल के हाथ चढ़ गए थे लेकिन के पास ईमान और इखलास था, उन्होंने उसके कुछ पॉइंट से पहचाना, फिर वो उस ग्रुप से अलग हो गए। बताओ कैसा उन्होंने क्या होगा कि ऐसे आलिम, हालांकि इनके मुकाबले में वो आदमी आलिम नहीं था लेकिन उसकी जबान में अल्लाह ने ऐसी कुव्वत दी थी कि एक आलिम भी उनके साथ लग गए और कुछ महीनों के बाद उनके कुछ जुमले जो उनको खटके कि अरे ये तो बातिल है और फिर अपने ग्रुप से उनके ग्रुप से अलग हो गए। तो उलमा, तो अब बताओ आवाम बिचारी कैसे समझेगी कि एक उलमा भी उनकी बात में आ जाते हैं। तो अंदर उनके अंदर इखलास था, साथ इसलिए दिया था कि अगर हक है तो हक का साथ देना चाहिए, लेकिन जब समझते गए तो अल्लाह उनको दिखा दे ये हक नहीं है तो बातिल है लेकिन हक के लिबास में आया है। और हमेशा बातिल हक के लिबास में आता है, बातिल बातिल के लिबास में आएगा तो मुसलमान उसको कभी कबूल नहीं करेगा, लेकिन बातिल हक के लिबास में आएगा और फिर समझ नहीं पाएगा, फिर वो बेचारा धोखा खा जाता है। जब हक के लिबास में आएगा तो फिर वो हक वाले को गालियां देगा और जो बातिल है उसकी बात सुनेगा, कहते तुम लोग झूठे हो ये सही है। तो फरमाया जिस वक्त ताल्लुक मालना, उस पर मैं बात बता रहा था, तकालीफ के वक्त परेशानी को दूर कर देता है, क्योंकि ताल्लुक माल्ला के बाद जो मुसीबतें आएगी, ताल्लुक माल्ला के बाद जो मुसीबतें आएगी या परेशानियां आएगी उसके नतीजे में घबराहट और बेचैनी नहीं होगी। जिस वक्त मशरक की पाकिस्तान के अलग होने का वाकया पेश आया, अब मशरक की पाकिस्तान कौन सा कहेंगे, यानी बांग्लादेश, जब हिंदुस्तान में से पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, एक मशरकी पाकिस्तान एक मगरबी पाकिस्तान, बीच में हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के एक तरफ बांग्लादेश है और हिंदुस्तान के इस तरफ पाकिस्तान है, तो इसलिए उस तरफ को कहेंगे मगरबी, मगरबी ये, और मशरक, मशरक कहते हैं जहां से सूरज निकलता है उसको मशरकी पाकिस्तान कहेंगे यानी बांग्लादेश, और मगरबी पाकिस्तान यानी इस तरफ आया ना हिंदुस्तान, इसलिए उसको मगरबी पाकिस्तान जो आज है पाकिस्तान। तो ये बता रहे हैं वो बांग्लादेश के बारे में। फरमाया जिस वक्त मशरकी पाकिस्तान के अलग होने का वाकया पेश आया, उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए, 90,000, तो उस मौका पर इतना सदमा हुआ कि किसी तरह करार नहीं आता था, चैन नहीं आता था, हर वक्त दिमाग पर वही सदमा मुसल्लत हो गया, न नमाज में दिल लग रहा था, न तिलावत कुरान में दिल लग रहा था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। हर वक्त परेशानी दिल पर छाई रहती थी कि या अल्लाह ये क्या हो गया। तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान फौजियों ने काफिरों के सामने हथियार नहीं डाले थे जैसे वहां डाल दिए। चुनाचे हजरत फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब को खत लिखा कि हजरत मुझे ये सदमा है, इस सदमे की वजह से किसी पल करार नहीं आ रहा है, परेशानी है कि आइंदा क्या होगा, और उसकी वजह से न नमाज में दिल लग रहा है न किसी और काम में दिल लग रहा है। जवाब में हजरत वाला ने एक जुमला तहरीर फरमाया, इस जुमले ने मेरे दरवाजे खोल दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसकी ठंडक दिल में महसूस होती है। और जब कभी इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो हजरत वाला का ये जुमला याद आ जाता है जिसकी वजह से परेशानी नहीं होती। वो जुमला ये था कि गैर इख्तियारी उमूर पर इतना तासुर लेना काबिले इसलाह है। अल्लाह अकबर, क्यों कि वो चीज थी जो गैर इख्तियारी थी, तुमने उस पर क्यों इतना असर ले लिया। यानी जो बात इंसान के इख्तियार में नहीं और गैर इख्तियारी तौर पर हो गई, मिन जानिबिल्ला हो गई, क्या तुम्हारे इख्तियार में है उसका मदावा करना, यानी उसको मदद करना, ये इसको पूरा करना, उसका इलाज तुम्हारे इख्तियार में है नहीं, तो गैर इख्तियारी तौर पर जो बात पेश आ गई है उस पर इतना तासुर लेना कि आदमी बेचैन और बेहद परेशान हो जाए, ये खुद काबिले इसलाह है। इसके माना यह है कि रजा बिल कजा में कमी है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो भाई, रजा बिल कजा में कमी है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल में कमी है। जिस शख्स को अल्लाह ताला पर भरोसा होगा और अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत पर भरोसा होगा, वो कभी किसी गैर इख्तियारी हादसा और वाकये पर इतना तासुब नहीं लेगा कि परेशानी लाहिक हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.